नमस्कार भारत, तारीख 5 नवंबर दिन गुरुवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। बिहार में आखिरी चरण का मतदान आज, 57 सीटों पर पड़ेंगे वोट, लेकिन भाजपा के विज्ञापन को लेकर जारी है तकरार।
कुछ अखबारों में बीजेपी की तरफ से एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जो मुजफ्फरपुर एडिशन एंड भागलपुर एडिशन में पाया गया, जिसको कमीशन के इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध पाया गया।
मिलवाएंगे आपको बिहार में ओबीसी की पार्टी के इकलौते हिंदू उम्मीदवार से।
ऐसा है कि कोई भी, मैं सबसे पहले बता चुका हूं कि सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू और मुस्लिम की नहीं होती है, वो डेमोक्रेटिक पाथ में होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्शन है।
और दो फाड़ होता अफगान तालिबान, साथ ही खबरें होंगी खेल की और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। अब से कुछ देर बाद बिहार में विधानसभा चुनावों के पांचवें और अंतिम चरण में 57 सीटों के लिए मतदान होगा। ब्रिटेन का कहना है कि शनिवार को मिस्र के सिनाई में क्रैश हुए रूसी विमान को विस्फोटक से गिराए जाने की प्रबल संभावना है। ब्रितानी विदेश मंत्री फिलिप हेमंड ने कहा कि ये अनुमान कई खुफिया सूत्रों से जुटाई गई जानकारियों के आधार पर लगाया गया है। अमरीकी अधिकारियों ने भी विमान में बम विस्फोट होने की थ्योरी का समर्थन किया है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसे साबित करने के लिए अभी पुख्ता सबूत नहीं है। एक अमरीकी अधिकारी का कहना है कि विमान को गिराने का दावा करने वाले इस्लामिक स्टेट से जुड़े चरमपंथी इसके पीछे हो सकते हैं। इसी बीच ब्रिटेन ने लाल सागर के तट पर बसे पर्यटन शहर शर्म अल शेख से आने वाली तमाम उड़ानों को सुरक्षा कारणों से टाल दिया है। क्रैश हुए रूसी विमान ने शर्म अल शेख से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी थी। ब्रिटेन ने शर्म अल शेख जाने वाले ब्रितानी नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है, जिस पर मिस्र ने गुस्से और निराशा का इजहार किया है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक निर्माणाधीन इमारत गिर जाने से कम 18 लोग मारे गए हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 70 से अधिक लोग जिंदा निकाले गए हैं और 100 से ज़्यादा अंदर फंसे हो सकते हैं। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अभी हादसे की वजह का पता नहीं चला है, हालांकि यहां काम कर रहे कुछ मजदूरों का कहना है कि इमारत को पिछले महीने आए भूकंप से नुकसान हुआ था। मौके पर मौजूद एक अधिकारी मोहम्मद उस्मान ने बताया,
तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से जख्मी या जिंदा हालत में निकाला गया। कुछ लोगों का कहना है 100 से 150 लोग यहाँ पर अंदर काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त जी वजह की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, उसकी रीज़न ये है कि फिलहाल तो यहाँ से रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है, यहाँ से जिंदा लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।
ये थे पाकिस्तानी अधिकारी मोहम्मद उस्मान के शब्द। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ताओं के एक समूह को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए गांजे की खेती करने की अनुमति दे दी है। फैसले का असर सिर्फ उन 4 लोगों पर ही होगा जो इस मामले को लेकर अदालत पहुंचे थे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भविष्य में मनोरंजन के लिए गांजे के इस्तेमाल की अनुमति के लिए रास्ता साफ कर सकता है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो का कहना है कि इस फैसले के बाद ड्रग के रूप में गांजे के इस्तेमाल पर नई बहस शुरू होगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मैक्सिको की गांजे पर प्रतिबंध की नीति ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा दे रही है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने मंगलवार को हुई कई पत्रकारों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। कैबिनेट की एक बैठक में उन्होंने प्रशासन से कहा कि आधारहीन गिरफ्तारियां न की जाएं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम नमस्कार भारत। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। बात बिहार की, जहां आज चुनावी संग्राम का आखिरी दौर है। राज्य की 57 विधानसभा सीटों पर पांचवें और आखिरी चरण के मतदान में अब से कुछ देर बाद वोट डालने का काम शुरू हो जाएगा। ये 57 सीटें फैली हैं राज्य के 9 जिलों में। पश्चिम बंगाल से लगने वाले सीमांचल इलाके के 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में आज वोट पड़ेंगे, तो मिथिलांचल के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में भी आज ही चुनावी उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। और क्या कुछ खास होगा आज के मतदान में, चलिए सुनते हैं पटना से मनीष शांडिल्य की ये रिपोर्ट।
आज के अंतिम पांचवें चरण में ऐसे क्षेत्रों में चुनाव होना है जहां की सीमाएं नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से मिलती हैं। ऐसे में सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी करते हुए इन्हें सील कर दिया गया है। इस चरण में जिन 9 जिलों में वोट पड़ेंगे उनमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार शामिल हैं। आज 827 राजनीतिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। इन उम्मीदवारों में 58 महिलाएं भी शामिल हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नए विज्ञापन से कल राजनीति गर्म रही। भाजपा ने कल अखबारों में दिए विज्ञापन में गोमांस पर लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह और सिद्धारमैया के बयान देकर नीतीश से इन पर सफाई मांगी थी। महागठबंधन ने इस विज्ञापन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद चुनाव आयोग की नाराजगी सामने आई और उसने कार्रवाई भी की। जैसा कि अपर मुख्य चुनाव अधिकारी आर लक्ष्मणन ने बताया,
कुछ अखबारों में बीजेपी की तरफ से एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जो मुजफ्फरपुर एडिशन एंड बागलपुर एडिशन में पाया गया, जिसको कमीशन के इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध पाया गया, जो पूर्व में उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी पेपर्स को भी और पार्टी को भी, तो उसके आलोक में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट को नोटिस निर्गत किया गया, उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया।
साथ ही आयोग ने कल यह भी कहा है कि 5 नवंबर यानी आज के लिए बिना उसकी अनुमति कोई भी पार्टी विज्ञापन जारी नहीं करेगी। इन सबके बीच मुख्य मुकाबले में माने जा रहे दोनों गठबंधनों की ओर से कल भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, अलग अलग दावे किए गए। भाजपा ने चुनावों में 3/4 तक बहुमत मिलने का दावा किया तो महागठबंधन के मुताबिक वह 2/3 से अधिक सीटें जीतेगी। जदयू नेता और सांसद पवन वर्मा ने कल पटना में दावा किया,
महागठबंधन को 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीत मिली। 1 तारीख के बाद जिस तरह के हथकंडे और पैंतरे बीजेपी ने अपनाए हैं, चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों के खिलाफ और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ, उससे साफ जाहिर हो गया होता है कि वो अब हताशा में है।
इस चरण में युवा मतदाताओं की भूमिका और ज्यादा निर्णायक मानी जा रही है। कुल 1.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं में 1/3 के करीब वोटर 18 से 29 आयु वर्ग के हैं। साथ ही इस चरण में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक और असदउद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया MIM की भूमिका भी अहम होगी। ये दोनों दल पहली बार बिहार के चुनावी रण में कूदे हैं। मनीष चांडिल, BBC पटना।
आज जिन जिलों में वोट पड़ने वाले हैं उनमें सीमांचल इलाके में मुसलमान मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, तो उससे सटे सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में यादव वोट निर्णायक कहे जा सकते हैं। वोटों का ये गणित जाहिर है महागठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? चलिए जानते हैं पटना में BBC संवाददाता पंकज प्रियदर्शी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो पंकज जी, क्या इस चरण में भी टक्कर कांटे की ही मानी जाए या फिर कुछ हालात बदले दिख रहे हैं आपको?
अशोक जी, मैं इस समय किशनगंज में हूँ जो सीमांचल का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, और आपको पता होगा कि सीमांचल इस बार क्यों चर्चा में है। सीमांचल इस बार इसलिए चर्चा में है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ से पहली बार बिहार में चुनाव लड़ रही है, और सारा ध्यान इस समय जिन जिलों पे है उसमें, जिन इलाकों पे है उसमें सीमांचल प्रमुख है। मैं इस समय किशनगंज के उस इलाके में हूँ जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है, बहुत वीरान सा नजर आ रहा है। हम अभी वहां से देख के लौटे हैं, लेकिन तैयारी हो रही है, रास्ता बहुत ही खराब है। तो जिस तरह की बातें यहाँ हो रही है, कल हम लोग कुछ लोगों से मिले भी थे, उसमें विकास भी मुद्दा है, लेकिन ओवैसी की पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में है अशोक, और इसी कारण हम इस इलाके में आए भी कि यहाँ देखें कि क्या स्थिति है, क्या हालात हैं। उसके अलावा 9 जिलों की 57 सीटों पर, जैसा कि आपने बताया, विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान हो रहा है। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं अशोक, उसमें नीतीश सरकार के कई मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता है अब्दुल बारी की सिद्दीकी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस चरण में सबकी निगाहें कोसी क्षेत्र पर है, जहां से पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक भी चुनाव लड़ रही है, और उसका भी बहुत कुछ दांव पर है अशोक, क्योंकि ये पार्टी भी इस बार पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। NCP जो शरद पवार की पार्टी है, कटिहार क्षेत्र में उसका भी दबदबा है, बिहारी कन्वर यहाँ से सांसद हैं, तो इस कारण उस इन सब सीटों पे नजर है।
जी, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कि MY कॉम्बिनेशन जो है इन सीटों पर अहम है, तो ये जानना चाहते हैं कि कल जिस तरह भाजपा का विज्ञापन सामने आया और उसे लेकर जो विवाद हो रहा है, क्या मतदाताओं में उसकी कुछ चर्चा सुनने को मिली आपको?
हाँ, चर्चा तो सुनने को मिली, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है क्योंकि पोलराइज करने की कोशिश हुई है, आपको पता है। और यहाँ पे हम लोगों को, हम बहुत कल देर रात यहाँ पहुंचे थे, तो बहुत ज्यादा लोगों से हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि शहर एक बहुत जल्दी ही सुनसान सा दिखने लगा था। लेकिन फिर भी जितने लोगों से चलते फिरते बात हो पाई, उसमें पोलराइजेशन का थोड़ा बहुत असर दिख रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उतनी दमदार नहीं है, जैसा कि अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि पांचवें और आखिरी चरण में भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। कल एक युवक मुझसे मिला था, वो कह रहा था कि हम विकास के नाम पे, हम चाहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो राज्य में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी पर सबका ध्यान है कि वो कैसा कर।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस जानकारी के लिए, अगले कार्यक्रम में फिर आपके पास आएंगे। जैसा कि पंकज बता रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM 6 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। इनमें से एक सीट है अररिया जिले की रानीगंज सीट। पार्टी ने यहां से अमित पासवान को उतारा है। वो सीमांचल में ओवैसी की पार्टी के अकेले हिंदू उम्मीदवार हैं। हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने ही उनसे मुलाकात की और पूछा कि उन्होंने ओवैसी की पार्टी को ही क्यों चुना।
ओवैसी साहब की पार्टी चुनने के पीछे मेरा डेमोक्रेटिक बे था। ओवैसी जी को बोलते हैं कि लोग मुसलमानों की वो पार्टी चलाते हैं, जबकि वो ऐसी नहीं है। वो कम्प्लीटली दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो मूल मिल जो थीम है उस पर वो काम करते हैं, इसी वजह से मैंने ओवैसी साहब को पार्टी को चुना।
बस यही वजह है कि आपको किसी और पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए आप आ गए?
नहीं, ऐसा नहीं है सर, किसी और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया इस वजह से मैं नहीं आया, क्योंकि हमें एक सिद्धांतवादी आदमी है, हम अमेटक्राइस्ट हैं। कई पोलिटिकल पार्टियों का ऐसे लोग हमारे साथ थे कि वो चाहते थे कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़े।
नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो एक आरोप लग रहा है कि जो महागठबंधन बना बीजेपी को रोकने के लिए, तो ऐसी साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में मुस्लिम वोट काट के महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे?
सर, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी के एजेंट के रूप में जो आरोप लगाते हैं ओवैसी साहब को, वो बेबुनियाद बात करते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि 242-43 में मात्र 6 सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं, और 243-42-43 पे 6 सीट में हमारा वो मुस्लिम वोट का जो परसेंटेज है वो महागठबंधन को धोखा नहीं देने जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, पिछले बार ओवैसी साहब सीमांचल में चुनाव नहीं लड़े थे, 24 में 18 सीटें भाजपा गठबंधन को मिला था, उस समय तो ओवैसी साहब नहीं थे।
तो सिर्फ 6 सीटों पर क्यों?
6 सीटों पर इसलिए कि सर, जो किसान होता है ना, पहले अपने बीज का टेस्ट करता है, उसके बाद में हजारों एकड़ में अपने बीज को फैलाता है। 6 पॉइंट से मैं चेक करना चाहता हूं कि यहाँ की जो दर्द और पीड़ा है वो जनता इसे खत्म करना चाहती है या नहीं चाहती है, इसके बाद में हम लोग आगे का एक्शन लेंगे।
लेकिन आप 6 में से अकेले हिंदू उम्मीदवार हैं
सर,
तो आप कंफर्टेबल रहते हैं उन पार्टी में?
ऐसा है कि कोई भी, मैं सर सबसे पहले बता चुका हूं कि सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू और मुस्लिम की नहीं होती है, वो डेमोक्रेटिक पाथ में होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्शन है।
ओवैसी साहब के अलावा पार्टी की और कौन सी खास बातें थी जिसने आपको आकृष्ट किया?
ओवैसी साहब के अलावा जो सबसे पार्टी की जो सबसे मूलभूत जो तत्व जो है, उद्देश्य है सर, वो वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। वो जो वीकर सेक्शन, जो धर्मांतरित हैं, बैकवर्ड हैं, मुस्लिम्स हैं, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, उन तमाम लोगों को जोड़कर वो काम करना चाहते हैं, जिनकी संविधान में अच्छी स्थान है लेकिन शासक वर्गों ने आज तक उन स्थान को फुलफिल नहीं किया।
कभी प्रचार करने के क्रम में कोई दिक्कत आई हो कि आप क्यों ओवैसी की पार्टी से खड़े हो गए, ऐसा लोगों ने कहा हो?
नहीं सर, मुझे तो एक्सेप्टेशंस मिला, क्योंकि मैं सिर्फ ओवैसी साहब की पार्टी का उम्मीदवार नहीं, मैंने कहा कि मैं रानीगंज का उम्मीदवार हूँ, हर जाति धर्मों के लोगों का मुझे समर्थन मिला।
अच्छा, अपने बारे में बताइए कि ओवैसी साहब की पार्टी में आने से पहले आप कहाँ, कैसे, कहाँ, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप?
सर, ओवैसी साहब की पार्टी के पहले मैं रामविलास पासवान जी के साथ था, और मैं कम्प्लीटली दलित ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड्स था। मैं दलित आदिवासी स्टूडेंट्स यूनियन का संस्थापक अध्यक्ष भी रहा हूँ, और रामविलास जी के पार्टी में दलित स्टूडेंट फेडरेशन का भी प्रदेश अध्यक्ष था। मैं रामविलास जी का साथ इसलिए छोड़ दिया कि रामविलास जी का जो डेमोक्रेटिक वे था वो अब ख़त्म हो गया है। वो परिवार में भी नहीं रहकर अपने बेटा के दिशा निर्देश पर डिपेंड हो गए। उनका जो रियल जो हिस्ट्री था, इंडियन पॉलिटिक्स में जो स्थान था, उसके बेटे के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गया।
ओवैसी साहब तो आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ये बताइए कि उनके अलावा, अभी आप पार्टी में तो जाहिर है उनका ही नाम लेंगे आप, उनके अलावा कोई राजनीति में आपका आदर्श है?
हम राजनीति में सबसे बड़ा आदर्श बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं सर।
कोई आज की पार्टी का कोई नेता नहीं दिखता आपको जिसमें उम्मीद है, उम्मीद की एक किरण देखते हैं आप?
मैं अरशदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर में दलितों और
उनकी तो बात में बोल दिया कि वो तो पार्टी के हैं तो आप उनका नाम लें, उनके अलावा
सर मुझे फिलहाल ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता इंडियन पॉलिटिक्स में मैं जिसको आदर्श मान सकूं।
मोदी साहब के बारे में क्या ख्याल है?
मोदी साहब के बारे में उनको आइडियल नहीं मानता। मोदी साहब परिस्थिति,
ये सवाल ही दूसरा, आइडियल की बात में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में, नेता के रूप में, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं?
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिस रूप में है वो प्रधानमंत्री की पूरी मर्यादाओं को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हमारे हिसाब से।
अगर आपकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या पार्टी छोड़ेंगे या बने रहेंगे?
मेरी एक भी पार्टी सीट नहीं जीत पाएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं सीट जीतूंगा ही। और
अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर एक दिन सब चुनाव में लड़ते हैं तो हार भी हो सकती है।
जी जी, और ऐसी उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो मैं तब तक जमा रहूंगा जब तक कि यहाँ पर मुझे जनता की समस्याओं को खत्म करने में मैं कामयाब नहीं होता।
ये थे MIM के उम्मीदवार अमित पासवान, जो अररिया जिले की रानीगंज सीट से उम्मीदवार हैं। वैसे आज के चरण में जिन VIP उम्मीदवारों पर सबकी नजरें रहेंगी उनमें नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से, RJD विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से, मंत्री नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर से होंगे और भोलानाथ यादव बहादुरपुर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वोटों की गिनती का काम तो 8 नवंबर यानी रविवार को होगा, लेकिन इससे पहले बड़ी पार्टियों के दफ्तरों में क्या माहौल है, यही जानने की कोशिश की पटना में सीटू तिवारी ने।
सुखाड़ से परेशान बिहार में इस बार चुनावी दावों की बम्पर फसल हुई है। सभी दलों का एक से एक बढ़कर दावा। वैसे पार्टी दफ्तरों की बात करें तो सबसे ज्यादा रौनक भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। पटना के वीरचंद पटेल स्थित दफ्तर में बैठकों का दौर जारी है और मतगणना के दिन यानी 8 नवंबर के लिए पार्टी कार्यशालाएं कर रही है। पार्टी के सामने आरामदायक गाड़ियों का काफिला आराम कर रहा है तो मुख्य दफ्तर के पीछे पूड़ियां तली जा रही है। बीते एक महीने से यहाँ कार्यकर्ताओं को खाना खिलाया जा रहा है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सूरज नंदन कुशवाहा दोहराते हैं कि बिहार इस बार दो दीपावली मनाने वाला है।
बिहार में दो दिवाली होनी है, एक दिवाली बिहार में परिवर्तन की दिवाली होगी और दूसरी दिवाली जो ऐसे दिवाली होती है धनतेरस होता है वो हो।
वहीं BJP दफ्तर से कुछ दूरी पर स्थित जनता दल यूनाइटेड में सन्नाटा पसरा है। यहाँ इक्के दुक्के लोग ही मौजूद हैं। पार्टी के महासचिव नवीन आर्या से जब मैंने BJP दफ्तर की रौनक और JDU के सन्नाटे का संकेत पूछा तो उन्होंने कहा कि BJP वाले अपनी हार मान चुके हैं सो सब पार्टी दफ्तर में आ गए हैं, जबकि JDU नेता रण क्षेत्र में डटे हुए हैं। वो दावा करते हैं कि नतीजों के दिन BJP में सन्नाटा होगा और JDU में रौनक।
हमारे जितने भी लीडर हैं, वर्कर हैं, वो मुस्तैद हैं अपने रण क्षेत्र में, और वो लोग जो है BJP में सब लोग ये सोच लिए हैं कि हमारी हार हो गई है तो उनके सारे लोग जो है आ गए हैं पार्टी कार्यालय में। तो 8 तारीख को आइएगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या रौनक है पार्टी में।
JDU की तरह ही राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में भी कोई रौनक नहीं दिखती। 21 साल से राजद के कार्यालय प्रभारी चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह बताते हैं कि दफ्तर में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं रहती। वो बताते हैं कि 1995 से 2005 तक जब तक राजद सत्ता में रही पार्टी दफ्तर कार्यकर्ताओं से भरा रहता था, लेकिन अब वो नजारा नहीं दिखता। वो उम्मीद जताते हैं कि पार्टी सत्ता में आई तो वो रौनक दोबारा लौटेगी।
जब बिहार सरकार थी उस समय काफी भीड़ होती थी, हमारे पार्टी ऑफिस में भी काफी लोग आते थे, यहाँ तक कि बड़े महानुभाव को भी बैठने का अवसर नहीं मिल पाता था, इसलिए कि कार्यकर्ता दूर दूर से आते थे।
चुनावी मौसम में जीत के दावों की भरमार है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 नवंबर को चुनाव परिणामों के बाद किस पार्टी दफ्तर में सन्नाटा पसरता है और कहाँ रौनक। पटना से BBC के लिए सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अफगान तालिबान में दो फाड़ होते दिख रहे हैं। दरअसल संगठन के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत की घोषणा के बाद ही अफगान तालिबान नेतृत्व संकट से जूझ रहा है। मुल्ला अख्तर मंसूर को अपना नेता मानने से इनकार करने वाले बागी गुट ने कल मुल्ला मोहम्मद रसूल को अपना नया नेता चुन लिया। पाकिस्तान के वार्ताकारों ने अफगान तालिबान के परस्पर विरोधी गुटों में सुलह कराने की कोशिशें की थीं, लेकिन वो कामयाब न हो सकीं। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
मुल्ला उमर की मौत के ऐलान के बाद से अफगान तालिबान में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान के बीच एक बागी गुट ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान किया है। पश्चिमी अफगानिस्तान में बागी तालिबान लड़ाकों की एक बैठक में मुल्ला मोहम्मद रसूल को बागी गुट का नेता चुना गया है। बागियों के इस गुट ने अफगान तालिबान के मौजूदा नेता मुल्ला अख्तर मंसूर पर लालची होने के आरोप लगाए हैं। बागी गुट के उपनेता अब्दुल मन्नान नियाजी ने अपने समर्थकों से कहा कि उनका उद्देश्य सभी तालिबान लड़ाकों को एकजुट कर मुल्ला अख्तर मंसूर के बजाय मुल्ला मोहम्मद रसूल के पीछे चलने के लिए राजी करना है। नियाजी ने कहा,
अव्वल कदम के दगजमुर दजामत मसला था, जमुर द वहदत मिल्ली मसला था, जमुर द टोल अफगानिस्तान इस्लामी मुजाहिदीन और टोल उल मसला।
सबसे पहले तो हम तालिबान नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता के मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं और अफगान तालिबान के सभी लड़ाकों को एक झंडे के नीचे लाना चाहते हैं। उसके बाद 1000 धार्मिक गुरुओं वाली शूरा परिषद हमारा मार्गदर्शन करेगी। अगर परिषद अमरीकी सैनिकों की विदाई के बाद अफगान सरकार से वार्ता का सुझाव देगी तो हम वार्ता करेंगे, और अगर वार्ता के लिए इनकार करेगी तो हम वार्ता नहीं करेंगे। अफगान तालिबान के नेता मुल्ला उमर की मौत के ऐलान के बाद से ही तालिबान में शीर्ष नेतृत्व को लेकर संघर्ष चल रहा है। इसी साल जुलाई में अफगान तालिबान ने माना कि मुल्ला उमर की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। मुल्ला उमर की मौत के ऐलान के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर को तालिबान का नेता घोषित किया गया, लेकिन सभी लड़ाके उनके पीछे एकजुट नहीं हो पाए। मुल्ला उमर के भाई और बड़े बेटे ने भी अख्तर मंसूर के नेता चुने जाने के तरीके पर सवाल उठाए थे। मुल्ला उमर की मौत के ऐलान से पाकिस्तान की मध्यस्थता में अफगान सरकार और तालिबान के बीच चल रही वार्ता भी पटरी से उतर गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी हालिया अमरीकी यात्रा के दौरान स्वीकार किया था कि मुल्ला उमर की मौत के ऐलान से तालिबान के साथ शांति वार्ता को नुकसान हुआ है।
अफगान तालिबान में दो फाड़ होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार आपको सुना रहे थे दिलनवाज पाशा, और दिलनवाज इस वक्त हाजिर हैं स्टूडियो में लेकर तमाम अखबारों को फैले पड़े हैं मेज पर। अखबार क्या कह रहे हैं दिलनवाज पाशा, सुर्खियां क्या हैं?
जी, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर जो तरह तरह के बयान आ रहे हैं, उन्होंने असहिष्णुता पर अपना मुंह खोला था, और उसके बाद
बाबा रामदेव ने भी कल उन पर बोला है।
जी, बाबा रामदेव ने कहा कि शाहरुख खान ने जो अपनी फिल्मों से कमाई की है उसको सरकार को लौटा दें। योगी आदित्यनाथ जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने उनकी तुलना पाकिस्तान के हाफिज सईद से की है, और कई तरीके के बयान आ रहे हैं।
भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी के दबाव में मेरे ख्याल से अपना उन्होंने ट्वीट वापस लेने,
उन्होंने शाहरुख खान पर कई तीखे ट्वीट किए थे जो उन्होंने वापस ले लिए। अनुपम खैर ने भी ट्वीट करके कहा था कि शाहरुख खान पर भारत को गर्व है और बीजेपी के नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। और
कुल मिलाकर शाहरुख खान आज सबसे सुर्खियों में।
जी बिल्कुल, और अनुपम खैर से ही जुड़ी एक और खबर है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खैर के नेतृत्व में कुछ फिल्मी सितारे कलाकार जो असहिष्णुता के खिलाफ अवार्ड लौटाए जा रहे हैं उसके विरोध में राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। आपको याद होगा सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने परसों ये मार्च निकाला था। एक खबर जो मेरा ध्यान खींच रही है द टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर है। इसके मुताबिक कनाडा में नई सरकार के मंत्रियों ने शपथ ली है और भारतीय मूल के हरजीत सज्जन वहां के रक्षा मंत्री बने हैं। ये जी बिल्कुल, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के पाटन में दलित बच्चों को आंगनवाड़ी में अलग से बिठाया जा रहा है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। और अब बिहार चुनाव से जुड़ी एक खबर बताता हूँ, द पायनियर अखबार के पहले पन्ने पर है। इसके मुताबिक पूर्णिया जिले का एक गाँव है पाकिस्तान, जहाँ अगर बीजेपी ने चुनाव जीता तो उसकी जीत की खुशी में पटाखे छूटेंगे। और इस खबर में कहानी दिलचस्प है, गांव का नाम पाकिस्तान होने की। भारत के बंटवारे के वक्त उस गांव के सभी लोग गांव छोड़ के चले गए थे,
खासकर भाजपा अध्यक्ष ने जिस तरह पाकिस्तान को जोड़ा था चुनाव प्रचार के दौरान, ये उसकी भी एक कड़ी में इसको जी, कह
जी,
सकते हैं।
जी बिल्कुल, और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मॉल्स और अस्पतालों में पार्किंग फ्री हो सकती है। लेकिन एक और खबर भी है पहले पन्ने पर, उसमें उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार नहीं, जो यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया है। अगर अब नया वाहन लोग खरीदेंगे तो उन्हें ज़्यादा पार्किंग शुल्क अदा करना होगा। और अमर उजाला की एक खबर जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री की बैठक में संचार ठप पड़ जाने की वजह से 10 मिनट का व्यवधान हुआ, तो जो लोग अपनी कॉल ड्रॉप होने से परेशान होते हैं,
जान लें कि प्रधानमंत्री
भी इसका जो डिजिटल इंडिया के दौर में जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उसकी शिकार हमारी।
दिलनवाज मैं जानना चाहूंगा, कल फोर्ब्स की नई लिस्ट आई है
जी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में 9वें नंबर पर है। ये खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है और इसी सूची में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले नंबर पर हैं।
लगातार कई सालों से वो पहले नंबर पर बने हुए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी आगे पहले नंबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की तमाम जानकारी के लिए दिलनवाज पाशा। और अब बात खेलों की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से मोहाली में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के हाथों T20 और वनडे सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में जीत हासिल कर घरेलू मैदान पर लाज बचाने की तैयारी कर रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के लिए सीरीज कितनी अहम है, यही पूछा हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने क्रिकेट विश्लेषक अयाज मेमन से।
देखिए, मेरे ख्याल से दोनों देशों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि साउथ अफ्रीका नंबर वन टीम तो है ही, लेकिन इंडिया में 7 साल में सीरीज नहीं जीती है, तो उनकी कोशिश पूरी रहेगी कि ये रिकॉर्ड को सुधारें। और जहां तक इंडिया का सवाल है, तो एक बड़ी ताकतवर टीम के खिलाफ खेलना है, नए कैप्टन हैं विराट कोहली, नए यानी बहुत यंग कैप्टन है, ज्यादा तजुर्बा नहीं है उनके पास। वो चाहेंगे कि एटलीस्ट इंडिया में जो उनका रिकॉर्ड है या इंडियन टीम का वो बरकरार रखे। अक्सर देखा जाता है इंडिया में जीतती है और वो रिकॉर्ड ये खराब नहीं करना चाहेंगे।
अया साहब, अभी जिस तरह से 2 दिवसीय अभ्यास मैच हुआ, एबी डिविलियर्स ने जिस तरह से शतक बनाया, इस दौरे पर उनका ये 4th शतक है, 3 शतक उन्होंने वनडे सीरीज में जमाए, क्या भारत के लिए ये खतरे की घंटी है?
भारत के लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से जहां से भी बॉलर आए उनके सामने विश्व में, वो खतरे की घंटी है। एबी डिविलियर्स अब अपने उरूज पर है, मुझे लग रहा है जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, उसके बाद वनडे मैचेस और T20 में इंडिया के खिलाफ इस दौरे पर, तो अपने उरूज पर है, इज एट द पीक ऑफ हिज फॉर्म, और उनको रोकना ऐसे लग रहा है कि मुश्किल नहीं, नामुमकिन लगता है। लेकिन खैर, स्पोर्ट है और एक दो लकी ब्रेक मिले या कुछ वो गलती कर बैठे तो जरूर एडवांटेज रहेगा इंडिया को। और डिविलियर्स के अलावा भी बहुत ही मजबूत बैटिंग है साउथ अफ्रीका की, हालांकि आशिम आमला कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बड़ा ही स्ट्रांग है।
आपको लगता है आशिम आमला की फॉर्म जरूर चिंता का कारण है दक्षिण अफ्रीका के लिए, लेकिन टेस्ट मैच जहां पर पूरा समय मिलता है और अगर वो विकेट पर एक बार टिक गए तो फिर वो फॉर्म में आ सकते हैं?
अगर फॉर्म में आते हैं आशिम आमला तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि अच्छी तेज रफ्तार से रन बनाते हैं। फील्ड सेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हर तरफ खेलते हैं, 360 डिग्रीज का रेंज है, कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हैं, टेम्पो बना के रखते हैं, मैच का मैच जिताते हैं। तो हाशिम आमला डिविलियर्स के साथ साथ और आजकल फैफ डुप्लेसी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं।
ये थे क्रिकेट विश्लेषक अयाज मेमन और उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त। और अब बारी उन खबरों को जान लेने की जिन पर आज रहेंगी नजरें।
बीते शनिवार मिस्र के सिनाई में क्रैश हुए रूसी विमान हादसे में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार आज से किया जाएगा। इसी बीच ब्रिटानी सरकार ने कहा है कि विमान क्रैश की वजह विस्फोटक भी हो सकते हैं। आधिकारिक जांचकर्ता विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच में जुटे हैं। मिस्र सरकार का कहना है कि जांच में अभी वक्त लग सकता है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्कल आज बर्लिन में सोशल डेमोक्रेट और बवेरियन कंजर्वेटिव गठबंधन सहयोगियों से प्रवासी संकट पर चर्चा करेंगी। वे 16 प्रांतों के नेताओं से भी इस संकट पर वार्ता करेंगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी आज ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से लंदन में मुलाकात करेंगे। सुरक्षा सहयोग वार्ता का अहम मुद्दा रहेगा। ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग चेओ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शनिवार को सिंगापुर में होने वाली ऐतिहासिक मुलाकात के मुद्दे पर आज राजधानी ताइपेई में प्रेस को संबोधित करेंगे। म्यांमार में रविवार को होने वाले आम चुनावों से पहले मुख्य विपक्षी नेता आंग सान सू ची चुनावों से पहले अपनी अंतिम प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि यदि चुनाव निष्पक्ष हुए तो इस बार उनकी पार्टी बढ़त हासिल कर सकती है। सुरक्षा वार्ता में शामिल होने मलेशिया आए अमरीकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर आज विवादित दक्षिण चीन सागर में मौजूद अमरीकी युद्धपोत थियोडोर रूजवेल्ट पर पहुँच सकते हैं।
और कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार।
बिहार में विधानसभा चुनावों के 5वें और अंतिम चरण में 57 सीटों के लिए मतदान शुरू होने वाला है। ब्रिटेन का कहना है कि शनिवार को मिस्र के सिनाई में क्रैश हुआ रूसी विमान विस्फोटक से गिराए जाने की प्रबल संभावना है। ब्रिटेन ने शर्मल शेख जाने वाले ब्रितानी नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है, जिस पर मिस्र ने गुस्से और निराशा का इजहार किया है। पाकिस्तान के लाहौर में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला फैक्ट्री के गिर जाने से कम 18 लोग मारे गए हैं। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ताओं के एक समूह को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए गांजे की खेती करने की अनुमति दे दी है और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने मंगलवार को ही कई पत्रकारों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अभी के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात आपसे होने वाली है 1 घंटे बाद। कार्यक्रम होगा विश्व भारती। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अशोक कुमार को अनुमति दें। नमस्कार।